मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 12 जनवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी कुछ ही दिनों के बाद होने वाली फरवरी मार्च में क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं ईशु गुप्ता दिल्ली से, बाल कृष्ण सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, रचना भिवानी हरियाणा से, विवेक वर्मा पीतमपुरा दिल्ली से, रवीश कुमार पटना बिहार से, शैलेंद्र पटेल भोपाल से, विनय कुमार दुबे आप भी भोपाल से, और संकेत श्रीवास्तव सिवनी मध्य प्रदेश से। तो ईशु, बालकृष्ण, रचना, विवेक, रवीश, शैलेंद्र, विनय और संकेत, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब हम बात करते हैं न्यूज एनालिसिस की, और न्यूज एनालिसिस में शुरुआत करते हैं रेडियो न्यूज से। और मित्रों, यदि आपने रेडियो न्यूज सुनी होगी तो आपने महसूस किया होगा कि उसमें कोई ऐसा विशेष टॉपिक नहीं है जिसको लेकर आज हम लोग विस्तार से बातें कर सकें, लेकिन यह बात भी तो हमको तभी पता लगती है जब हम रेडियो न्यूज सुनते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिए रेडियो न्यूज की फिर कोई वक्त नहीं रहती है या उस दिन के न्यूज की कोई वक्त नहीं रहती है। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा कि जो न्यूज होती है वो एक फ्लोइंग फॉर्म में होती है, मतलब लगातार उसका जो स्वरूप है वो लगातार बहते रहने वाला स्वरूप है। इसीलिए आप सोचे कि कभी कोई न्यूज आपको परफेक्ट कंप्लीट तरीके से एक ही दिन मिल जाएगी तो आप गलत सोच रहे हैं। फिर तो आप आर्टिकल पर जाइए, आर्टिकल पढ़िए, वहां आपको कंप्लीट हो सकता है कि वो चीजें मिल जाए। हालांकि वो भी कुछ चीज दिनों के बाद फिर से पता लगा कि और कुछ एडिशन की मांग कर रही है, उसमें कुछ और जुड़ गया है। और इनफैक्ट मित्रों, आपको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि अब जो सिविल सर्विस की तैयारी की जो चुनौती है वो चुनौती ही यही है कि कोई भी चीज अब बनी बनाई नहीं है। तो हम न्यूज सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, भले ही उस अखबार में कोई हमें इंपॉर्टेंट चीज न मिले, न्यूज में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपना काम किया है और ऐसा काम किया जो किया ही जाना चाहिए। 2-3 बातें इस लिहाज से आपने न्यूज में सुनी होंगी मित्रों, जैसे प्रधानमंत्री जी जो सहारा और बिरला के जो डायरियों को लेकर के जो एक याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी पर और कुछ मुख्यमंत्रियों पर, कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर उन ग्रुप्स से पैसा लेने का आरोप लगा था, उन्होंने डायरी में मेंशन कर रखा होगा, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और इस आधार पर रिजेक्ट किया है कि जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो बहुत ठोस सबूत नहीं है। अब आप देखिए कि यहां पर थोड़ी सी एक अनदर व्यूज आपको दिखाई दे सकता है कि अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम अक्सर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायिक सक्रियता ज्यादा हो गई है, कार्यपालिका के साथ उसका तनाव बढ़ गया है, वो तंग कर रही है सरकार को, या कह लीजिए सरकार उससे तंग महसूस हो रही कर रही है। तो ऐसे जो उदाहरण है अगर आपके दिमाग में है तो आप एक बैलेंस व्यू ले सकते हैं। बैलेंस व्यू इस मायने में कि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतने जिम्मेदार संस्थाएं हैं और जहां भी उनको लगता है कि नहीं वो उसके अनुकूल चीजें नहीं हैं तो उनको रिजेक्ट भी करता है, अदरवाइज अगर उसको परेशानी करना होता तो इस याचिका को स्वीकार कर लेता और जांच के आदेश दे देता, कोई इस पर बहुत ज्यादा उंगली भी नहीं उठाता, थोड़े बहुत आर्टिकल्स लिख लिए जाते बस खत्म, लेकिन मामला तो चल पड़ता उससे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस गरिमा की रक्षा की है और जहां भी हम अक्सर हम देखते हैं कि वो उसकी रक्षा करता भी है। तो ये एक अनदर व्यू है कंटेंट के रूप में यहां, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और जब आप आंसर लिखें तो इस तरह के व्यूज का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर होता यह है कि हम एक तरफा चीजों को लिखते चले जाते हैं जो मुझे लगता है कि सही उत्तर या बैलेंस उत्तर जिसे नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो खबर थी मित्रों, केन्या को लेकर के थी। भारत और केन्या के बीच में जो हुआ है, जो समझौते हुए हैं, उसमें देखिए सिंपल सी बात यह है कि अभी हम खासकर केन्या अलग एक देश को लेकर के तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है अपने आप में, वो हमारे लिए सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूर मतलब इम्पॉर्टेंट है, और खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत। मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में, सेकंड पेपर में, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है उसके तहत अफ्रीका से जुड़ी कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है। तो उस रूप में एक थोड़ा सा ही आपके लिए बहुत कम, मतलब एक इशारे के तौर पर ही जानना बस जरूरी है, नथिंग मोर देन दैट। फिर विमुद्रीकरण की खबरें तो अभी रोज आप देख ही रहे हैं। अभी भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यही कहा है कि जो संकट है, जो दिखाई दे रहे हैं, वो अस्थाई प्रवृत्ति के हैं। अभी कुछ समय के लिए सब चीजें दिख रहा है जैसे कि रुक गई हैं या नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट होंगे वो बेहतर ही होंगे। तो अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, धीरे धीरे और भी चीजें आने लगेंगी। जैसे कल परसों के न्यूज में आपने सुना था कि कार की बिक्री कम हो गई, बाइक की बिक्री कम हो गई। तो डेफिनेटली जो अगर आपको बहुत शुरू की बातें ध्यान में हो तो मैंने कहा था कि डेफिनेटली तुरंत तो असर होगा ही, और सबसे ज्यादा जो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ेगा वो विलासिता की वस्तुओं पर पड़ेगा। विलासिता की वस्तुएं का मतलब है कि जो हमारे जीवन की बहुत बड़ी जरूरतें नहीं है लेकिन फिर भी हम एक लग्जरी के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं। कारोबार तो आजकल ऐसी ही चीजें हो गई, बड़े शहरों की बात अलग है जो महानगर हैं, अदरवाइज देखिए छोटे छोटे गांव में भी लोग कार लिए हुए हैं, एसयूवी लेके घूम रहे हैं जबकि उनकी कोई ऐसी जरूरत है नहीं। तो इन सबकी बिक्री पर तो फर्क पड़ना ही था क्योंकि जब ब्लैक मनी इस तरीके से खत्म होगा बाजार से, और अभी तो चलिए ब्लैक मनी था या नहीं था जो कुछ भी हो, लेकिन जितना भी अमाउंट था वो तो कम से कम बैंक में जमा हो गया है, निकालने की पूरी तरह से छूट नहीं है, तो कैश क्रंच तो है, नगदी की कमी तो है ही, तो उसमें बिक्री में तो कमी आनी ही थी। उसमें कौन सी ऐसी बात हो रही है जो कि नहीं होनी थी और हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि हमारी जो रबी की बुआई का जो रकबा है वो बढ़ा है, उन क्षेत्रों में हमें कमी नहीं दिख रही है। जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो हमारा बकायदे बढ़ा है, उनमें कमी नहीं दिख रही है। तो अभी दोनों तरह की चीजें मिल रही हैं, बस आप अपने दिमाग में इन चीजों को रखते रहें, एनालिटिकल तरीके से इन पर आप विचार भी करते रहें क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तभी आप एक बैलेंस तरीके से उत्तर देने की स्थिति में आएंगे। तो दोस्तों न्यूज में तो ये केवल 2-3 चीजें थी। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। मित्रों आज मैं न्यूज़पेपर्स के आपको काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। यू कह लीजिए कि सोमवार को जो मैंने बहुत कम क्लिपिंग्स दिए थे उसकी मैं अब आपसे बदला ले रहा हूं, भरपाई कर रहा हूं, एवरेज ठीक कर रहा हूं, आप यू कह लीजिए। आज की प्रेस क्लिपिंग्स में मैं एक बहुत ही खूबसूरत आपको प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं जो द हिंदू पेपर का है, जो यानी कि कल के हिंदू पेपर में छपा होगा। मैं एक दिन पुराना हिंदू पेपर आप लोगों को दे पाता हूं। उसमें जेंडर गैप के बारे में है, जेंडर बजटिंग के बारे में है। दोस्तों ये जेंडर बजटिंग, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम में बैठे हों या आपकी दोस्ती अनसॉल्व्ड पेपर के साथ है जो कि होनी ही चाहिए, तो आप देखेंगे कि हमारे जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर अभी लेटेस्ट जो 2016 में अभी दिसंबर में हुआ है, उसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड पेपर का सेकेंड क्वेश्चन, वो जेंडर बजटिंग के बारे में ही है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, बहुत दिनों से मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़कर सुनाया भी नहीं है, तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि सर बिल्कुल भूल ही गए हैं। नहीं, मैं सवाल ही नहीं उठता कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं इस काम को बड़े अपने धर्म की तरह ही निभाता हूं और मेरे लिए काम ही धर्म भी है दोस्तों, वो अपने अपने विचार हैं। खैर सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए क्या उसमें पूछा गया है सिविल सर्विस में, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है, भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं एवं स्थिति हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स अ जेंडर बजटिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 200 शब्दों में लिखना है और ये 12.5 नंबर का प्रश्न है। एक चीज तो आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है लगभग स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आवश्यकता बताइए, क्या आवश्यकता है। हाँ, जो स्टेटस है, जो अभी स्थिति है, उसके उसमें थोड़ी सी आपको समीक्षा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इस टॉपिक को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इसे अपडेट नहीं कर रखा है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो स्वरूप है उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। जो टॉपिक है वो टॉपिक मित्रों अब आपकी तैयारी के दायरे पर निर्भर करता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं और कितनी व्यापकता के साथ देखते हैं। क्योंकि जहां तक जेंडर बजटिंग की बात है, मुझे सच पूछिए तो पिछले लगभग एक डेढ़ साल के अंदर, मतलब मुझे कुछ ऐसा कोई ऐसा अलग से बहुत बड़ा आर्टिकल याद नहीं आ रहा है जो इस पर आया हो। हो सकता है कि मैंने मिस भी किया हो, क्योंकि बीच में थोड़ी बहुत मिस हो भी जाते हैं, या दूसरे किसी और अखबार में आया हो। हिंदी के अखबारों में तो कम से कम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि इसको लेकर के कोई आर्टिकल था। इंग्लिश के अखबारों में हो सकता है कि हो, क्योंकि कुछ अखबार मैंने बाद में शुरू किए हैं। मित्रों, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ जाता है, उसको चीजें बड़ी नई लगने लगती हैं कि कहां से शुरू करें, ये क्या पूछ दिया गया है। लेकिन फिर भी यदि आप में कॉमन सेंस है तो कुछ ना कुछ तो आप लिखकर आ ही जाएंगे। मतलब आप ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ पूछा कुछ गया है और लिख करके कुछ आएंगे। जैसे जेंडर बजटिंग, तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो ये तो कह सकते हैं कि अब जेंडर क्या, जेंडर मतलब दो, मेल और फीमेल। तो ये जो जेंडर बजटिंग है, ये कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहा जाए कि साहब फीमेल के लिए अलग से बजट में व्यवस्था की जाए। अगर इस कॉमन सेंस को भी आप लगाएंगे तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि मतलब तुरंत आप इसको लिख सकते हैं और आप सही ही होंगे कि हाँ, जेंडर बजटिंग का मतलब यही है कि जो विमेन है हमारे यहां, विमेन के लिए एक अलग से बजट का भी प्रोविजन किया जाए। मित्रों, आप लोगों को बहुत अच्छे से, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो ध्यान होगा, अनसॉल्व्ड पेपर से भी अगर आप टच में हैं तो ध्यान होगा कि विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वीकर सेक्शन में आती हैं, दूसरा अलग से आपके सिलेबस में भी विमेन को मेंशन किया हुआ है, अलग से मेंशन ही किया हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है आपके विमेन एम्पावरमेंट का ही है। और जो बजटिंग है, जो जेंडर बजटिंग है, वो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट का सबसे अभी लेटेस्ट और स्ट्रांगेस्ट इक्विपमेंट भी है, हथियार भी है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो जेंडर बजटिंग है, क्वेश्चन भले ही 2016 में पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी जो व्यवस्था की गई है वो कुछ अभी 14-15 में की गई है। सच पूछे तो जेंडर बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग 2005 के आसपास आ गया है, और 2005 में बकायदे इसको एक फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया है GRB के नाम से, जिसे आप कहते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिंग बजटिंग। और यदि आपने कभी बजट देखे हों, ओरिजिनल जब जो पेश किए जाते हैं, और आजकल तो सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट के इस तरह के पार्ट हैं, मैंने देखा कि मार्केट में अवेलेबल भी है, आपके मुखर्जी नगर वगैरह में तो मिलते रहते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि बजट का जो पार्ट ए और पार्ट टू होता है, जो बजट का स्टेटमेंट होता है, वो 2005 से ही, तो वो पार्ट ए और पार्ट टू में बकायदे अलग से विमेन बजटिंग की व्यवस्था होती है। थोड़ा सा फर्क यह है कि पार्ट ए में तो जो विमेन स्पेसिफिक स्कीम होती है, मतलब ऐसे इस योजनाएं जो केवल महिलाओं के लिए हैं, और बट नेचुरल है कि अगर वो महिलाओं के लिए स्कीम है तो 100% बजट महिलाओं के लिए होगा उस स्कीम के बारे में। तो पार्ट ए में तो ऐसे योजनाओं को रखा जाता है, बजट को रखा जाता है, और पार्ट बी में ऐसी योजनाओं को रखा जाता है जिस पर विमेन पर भी खर्च होना हो, और वो जो खर्च है टोटल बजट का, जितना भी पैसा उस प्रोग्राम में लगना है, उसका एटलीस्ट 30% विमेन पर खर्च हो, तो ऐसे को वो फिर वो जेंडर बजटिंग में ले लेते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई जेंडर बजटिंग का, कि मतलब कुल बजट का इतना प्रतिशत महिलाओं पर ही खर्च किया जाएगा। और आप ये पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि पूरे के पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में आप देखेंगे कि महिलाओं के एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। दुनिया अब समझ चुकी है कि बिना महिलाओं को एम्पावर किए आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। और अभी जो गोल बनाया गया है, जो मिलेनियम गोल फिर से बनाया गया है, ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, अब दुनिया को कैसे बदले जाएं, दुनिया को बदलने के लिए जो 17 बिंदु निर्धारित किए गए हैं उसमें एक बिंदु जेंडर इक्वलिटी का भी है कि जब तक स्त्री पुरुष में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक आप इस दुनिया को बदल नहीं सकते। और भी दूसरी जो मजेदार बात है वो ये है कि अभी आप सब पेरिस सम्मेलन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, हुआ था पेरिस सम्मेलन, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। 2015 में यह सम्मेलन हुआ था, अक्टूबर दिसंबर कुछ इस तरह के आसपास हुआ था। उसमें भी बड़े साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज है उसका सीधा सीधा संबंध विमेन एम्पावरमेंट से है, गरीबी के निराकरण से है। जब तक इनसे हम नहीं लड़ेंगे तब तक सोचे कि क्लाइमेट चेंज में कुछ चमत्कार हो जाएगा तो संभव नहीं है। यानी कि अब आपको विमेन को अपना पार्टनर बनाना ही होगा डेवलपमेंट के प्रोसेस में, सोसाइटी के प्रोसेस में, समाज की जितनी दूसरी तरह की समस्याएं हैं उनके भी प्रोसेस में। तो दोस्तों ये है जेंडर बजटिंग, और इस पर जो हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, बहुत डिटेल में आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं आप लोगों को आज के प्रेस क्लिपिंग्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, और मेरी कोशिश होगी कि इसका हिंदी वर्जन, जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं करेंट कंटेंट में अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कर सकूं, मेरी पूरी कोशिश इस बात की होगी। और मित्रों आप जानते ही हैं कि अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देख लीजिए तो आपको हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो महिलाओं पर, महिलाओं के एम्पावरमेंट पर मिल ही जाएंगे। तो ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं और आपको कई प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन सबको देख लीजिएगा और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग कर लीजिएगा। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स से भी बस अब इतना ही, अब मैं आता हूं ईमेल पर, और ईमेल के चरण का मेरा वही पहला वाक्य हमेशा की तरह आज भी, कि सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे मित्रों ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि अभी पिछले कुछ समय से मुझे मेल मिल रहे हैं कि खासकर अभी जो मेरी 2 किताबें आई हैं जो मैंने आप सबको, मतलब ये कह लीजिए कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं न्यू ईयर गिफ्ट की तरह, क्योंकि मैंने आपको कोई गिफ्ट तो दिया नहीं है, गिफ्ट तो फ्री में दिया जाता है ना, लेकिन आप सब तो किताब खरीद के पढ़ेंगे तो क्या गिफ्ट। लेकिन एक राइटर तो यही कहता है दोस्तों, और उसके पास तो क्या है गिफ्ट ही, मान लीजिए वो उसमें इतनी मेहनत करता है और अपने दिमाग लगाता है, और अब क्या है कि फ्री तो बांटा नहीं जा सकता क्योंकि वो व्यावहारिक नहीं है। तो राइटर के लिए तो यही गिफ्ट है कि वो पाठकों को कुछ अच्छी चीज दे दे। तो मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है कि कई मेल मुझे इस तरह के मिलने लगे हैं कि उन्हें किताब पसंद आ रही है, आप IAS कैसे बनेंगे का पार्ट 2 भी पसंद आ रहा है, और कुछ मेल मुझे प्रशासनिक चिंतक के बारे में भी मिले हैं, लेकिन आप आईएएस कैसे बनेंगे का पार्ट 2 पर काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं लिखने वाले सभी अपने प्रिय पाठकों के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद भी देता हूं। और मित्रों अब कुछ नाम मैं ले रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, उनमें है महिपाल मुर्मू, ओम प्रकाश भट्ट विशेष पाठक बिहार से, शुभम टोपनावर, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, पावेल दत्ता कोलकाता से, रवि जाड़िया अहमदाबाद से, अवनीश साहू बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, प्रताप लोहिया बाड़मेर राजस्थान से, हेमंत यादव, सूर्यपाल सिंह जयपुर से, राहुल उपाध्याय न्यू दिल्ली से, मोहित साहू, सूरज कुमार न्यू दिल्ली से, और नेहा यादव, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।